मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 19 जुलाई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं प्रखर पाठक, आपका गांव है आर्य, जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, और अंकित कुमार यादव, आपका गांव है नंदना, जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज चूंकि शुक्रवार है और शुक्रवार को सामान्यतया मैं कुछ सूचनाएं आप लोगों को दिया करता हूं, तो सूचनाएं कुछ इस तरह से हैं कि कल और परसों दो दिनों के लिए डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा। शनिवार और रविवार को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ये हर सप्ताह ही ऐसा होता है, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स आप सबको एज इट इज मिलेंगी, यानी कि अभी तक जो मिलती रही हैं उसी पैटर्न पर कल भी यानी कि शनिवार को भी प्रेस क्लिपिंग्स मिलेंगी। हाँ, रविवार को प्रेस क्लिपिंग्स भी नहीं मिलेंगी। योजना और कुरुक्षेत्र के आपको हिंदी और अंग्रेजी के आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे, साथ ही साथ मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर हम लोग हर सप्ताह आप सबको एक क्वेश्चन दिया करते हैं जो 200-250 शब्दों का ही होता है। उसका पर्पज है कि आप सब मेन एग्जामिनेशन के लिए उन प्रश्नों का अभ्यास करके तैयारी कर सकें, अपने आप को मजबूत बना सकें, क्योंकि सामान्यतया मित्रों ये देखा गया है कि ज्यादातर स्टूडेंट अपने आप को प्री के प्रिपरेशन तक सीमित कर लेते हैं। देखिए, अगर आपका प्री में सिलेक्शन हो भी गया तो क्या हुआ, केवल आप एक पायदान ऊपर चढ़े हैं। अगर आप मेन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आप वही हैं जहां आप थे, तो इसीलिए जो सही मायने में स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो प्री की तैयारी नहीं करते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं, और मेंस की तैयारी में ही प्री की तैयारी भी होती है। यही सोच करके हम लोग साप्ताहिक क्वेश्चन प्रोवाइड किया करते हैं, और मैं आप सबसे कहना भी चाहूंगा कि खासकर ये प्रश्न इस तरीके के होते हैं जिनके अभी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना होती है। उदाहरण के तौर पर अभी सितंबर में मेन के एग्जाम होने हैं, तो जानबूझकर इस तरह के प्रश्न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सीधे सीधे भी आपकी प्रिपरेशन में आपको मदद मिल सके। और इसके अतिरिक्त जो हमारे अपने क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनके पास स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं खासकर हिंदी माध्यम को लेकर के जो हम लोग बातें कर रहे थे उसी से जुड़े दो प्रश्नों पर बात करूंगा, क्योंकि काफी मेल मुझे इस तरह के मिले हैं, और वह सी सेट और जनरल इंग्लिश के पेपर को लेकर। लेकिन आइए पहले थोड़ी सी दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। न्यूज में आपने सुना कि वित्त विधेयक पारित कर दिया गया है। सामान्यतया मैंने देखा है कि स्टूडेंट के दिमाग में दो विधेयकों को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है, एक वित्त विधेयक जिसे आप फाइनेंस बिल कहते हैं और दूसरा है धन विधेयक जिसे आप मनी बिल कहते हैं, और अक्सर इन पर प्री में क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। मैं आपको बेस बता रहा हूं, है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं आपकी डिटेल्स नहीं बता रहा हूं आपके सामने। देखिए, हमारे पास मंत्री हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, मनी मिनिस्टर तो नहीं कहते, राइट, फाइनेंस मिनिस्टर। तो आप याद कर सकते हैं हमारे वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। वित्त मंत्री के अंडर में, उनके अंडर में दो तीन और मंत्री होते हैं, जैसे हमारे अनुराग ठाकुर जी राज्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री के अंडर में काम कर रहे हैं, वित्त मंत्रालय में वो राज्य मंत्री हैं, ठीक है। अब अनुराग ठाकुर जी को हमारे वित्त मंत्री ने, जो कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, उन्होंने अपने मंत्रालय का कोई विभाग दे दिया होगा कि भाई तुम राजस्व विभाग देख लो, तुम व्यय विभाग देख लो, तुम बैंकिंग देख लो, जो भी अपनी वो व्यवस्था करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, और उनके अंडर में, वित्त मंत्री के अंडर में मान लीजिए तीन राज्य मंत्री हैं, इसका मतलब हुआ कि जो वित्त मंत्री है वो बड़ा मंत्री है, ठीक है, और उसके अंडर में दूसरे मंत्री हैं, इसका मतलब हुआ कि वित्त विधेयक एक बड़ा विधेयक है, और जो धन विधेयक होगा वो उसके अंदर होगा। मतलब धन विधेयक तो वित्त विधेयक का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक का हिस्सा नहीं होगा। यानी कि वित्त विधेयक एक बड़ा छाता है, उसके नीचे ये धन विधेयक भी खड़ा है, ठीक है। सच पूछे तो दोनों में जो मामला अंतर है वो टेक्निक है, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा समझाने में वक्त लगेगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो दोनों में मूलभूत अंतर होता है टेक्निकल, उस रूप में कि ये कैसे पारित होता है। देखिए, धन विधेयक एक बहुत ही संवेदनशील विधेयक होता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, नहीं होगा इसका निर्णय याद रखिए कि स्पीकर लेते हैं। स्पीकर को पूरा अधिकार है कि वो किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करे या न करे, और यदि कोई विधेयक धन विधेयक हो जाता है तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर, याद रखिए, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता, और सारे अधिकार लोकसभा के पास ही हैं इसे प्रस्तुत करने के। लेकिन जो वित्त विधेयक है उसके साथ ऐसा नहीं है। वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा को भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो दूसरे विधेयकों के बारे में प्राप्त हैं, यानी कि धन विधेयक के बारे में लोकसभा के पास विशेष अधिकार हैं। तो दोस्तों, ये मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको दी है, ज्यादा देने की स्थिति में मैं फिलहाल नहीं हूं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, विशेष रूप से जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी को लेकर है। अभी आपने दो दिन से आप एक खबर सुन रहे हैं, और खबर यह सुन रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को खोल दिया है। एयर स्पेस को खोल दिया इसका मतलब है कि पाकिस्तान के ऊपर से कोई भी देश अपनी उड़ान भर सकता है। देखिए, जैसे हमारे पास जल सीमा होती है 12 नॉटिकल माइल्स, जिसे हम लगभग कह लीजिए 22.2 किलोमीटर, समुद्र में भी हमारा अधिकार होता है, हमारी जो स्थल सीमा है उससे 22.2 किलोमीटर, जिसे उसकी भाषा में हम कहते हैं 12 नॉटिकल माइल, वो हमारी सीमा रेखा है, स्थल हमारी सीमा रेखा है। इधर अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ अगर जाएंगे, बांग्लादेश की तरफ, तो स्थल में हमारी सीमा रेखा बनी हुई है। ठीक इसी तरह से वायु में भी हमारी सीमा रेखा होती है, उस पर भी हमारा अधिकार होता है, हर देश का अधिकार होता है। तो जो हमारे जल और स्थल की जो सीमा रेखा है उसको अगर आप ऊपर आकाश तक ले जाएं तो उस हिस्से तक उस देश का अधिकार होता है। पाकिस्तान ने उस पर अभी प्रतिबंध लगा दिया था, खासकर अभी जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक किया था, तो इसके बाद से जो विमान थे भारत के भी और दूसरे देशों को भी, उसके ऊपर से उड़ करके नहीं जा रहे थे, साइड से डाइवर्ट होकर के जा रहे थे, तो इन देशों को भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, और इससे पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लगभग 6.8 अरब रुपए का नुकसान हुआ, ये कैलकुलेट किया गया है। तो अब वो एयर स्पेस पाकिस्तान ने खोल दिया है। मैं इसकी चर्चा केवल आपसे इस तथ्य की तरफ ध्यान दिलाने के लिए कर रहा हूं मित्रों, कि जो सिक्योरिटी वाला आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है, कह लीजिए सिक्योरिटी का जो सब्जेक्ट है, जनरल स्टडीज मेंस के थर्ड पेपर में, उसमें आकाशीय सुरक्षा के बारे में अलग से बात नहीं की गई है, सीमा सुरक्षा के, सीमा प्रबंधन के बारे में बात है, जल सीमा के बारे में बात नहीं, आकाश सीमा के बारे में बात नहीं है। लेकिन करंट अफेयर्स से जो पूछा जाता है उसके तहत इस बार जो सितंबर में एग्जाम होने हैं, चूंकि अभी हम केवल जुलाई के मिड में हैं, तो आकाशीय सुरक्षा के बारे में पूछे जाने की थोड़ी सी संभावना बनती है। तो इस पर जो स्टूडेंट मेंस के लिए उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद क्या कर रहे हैं, अब तो रिजल्ट ही आ गया, जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि भारत अपने आकाशीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या कर रहा है और उसे क्या क्या और करना चाहिए, इसके बारे में एक छोटा सा नोट्स जरूर बना लें। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय के बारे में, सी सेट और जनरल स्टडीज को लेकर। कल मुझे बहुत से मेल मिले, और कुछ मेल तो इस तरह के भी मिले जिसे देखकर मुझे पढ़कर दुख हुआ, उनके मार्कशीट भी आए थे। मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर किया है, जैसे उदाहरण के तौर पर कट ऑफ मार्क्स है 98, लेकिन उसने स्कोर किया है 116, काफी अच्छा स्कोर है, लेकिन पता लगा कि वो मेंस में इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाया। सी सेट में उसे 66 मार्क्स लाने थे, लेकिन वो 63.3 मार्क्स पर रुक गया, थोड़े से के लिए रह गया। ये एक संकट है। दूसरा संकट है जनरल इंग्लिश को लेकर के। कुछ स्टूडेंट ने लिखा है कि सर, जनरल इंग्लिश में भी बहुत स्टूडेंट रुक जाते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं। मैं अब इस पर थोड़ी सी बात करूंगा दोस्तों। हालांकि अभी ठीक है, आपने कुछ समय पहले पढ़ा है कि सी सेट के को खत्म किए जाने की चर्चा चल रही है, यूपीएससी ने रिकमेंड किया है, मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा, होता है या नहीं होता है, लेकिन यदि आप इस पर मांग करेंगे हिंदी मीडियम के होने के नाते कि सी सेट को खत्म कर दिया जाए, तो ये मांग जायज नहीं होगी। यूपीएससी अपने ढंग से अगर कोई तर्क दे रहा है तो बात अलग है, क्योंकि इसमें मीडियम ज्यादा मायने नहीं रखता है। अब आप देखें कि सी सेट की तैयारी, साल भर आप तैयारी करते हैं, अगर उसमें कुछ चीजों के बारे में थोड़ा सा वक्त दे करके विशेष तैयारी कर लें, उसमें क्या दिक्कत है? आप सोच करके देखिए कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मतलब 16-17 का जो हमारा रिपोर्ट है उसमें दिखाया गया है कि 50% स्टूडेंट जो सिविल सर्विस में सिलेक्ट हो रहे हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, और ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट आप कल्पना करके देखिए कि ह्यूमैनिटीज के कितने सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं। जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज के हैं, और वो इंजीनियरिंग के होते हुए भी इसमें तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हमारे ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सीसेट की थोड़ी सी तैयारी नहीं कर सकते? अगर हम नहीं कर सकते तो फिर कहीं ना कहीं हम अपनी अक्षमता और अपनी अयोग्यता को ही प्रमाणित कर रहे हैं। फिर हम ये चाह रहे हैं कि जो कुछ हम जानते हैं बस हम वहीं तक सीमित रहना चाहते हैं और हमें योग्य मान लिया जाए। दोस्तों, योग्यता अलग बात है और क्षमता का होना अलग बात है। सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको प्रूफ करना होगा कि आप में क्षमता है, योग्यता नहीं। योग्यता वो आपको बाद में पैदा करेंगे। क्षमता का मतलब क्या है कि आपसे कुछ भी कराया जा सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सी सेट की तैयारी करके कम से कम ये तो प्रूफ कर दीजिए कि मैं ये कर सकता हूं, नई चीज को सीखने की क्षमता मेरे में है, नए काम को कर पाने की क्षमता मेरे में है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद आपको नए नई चीजें ही करनी पड़ेंगी, नई समस्याएं आएंगी, उनको नए तरीके से सुलझाना पड़ेगा। तो अपनी क्षमता का प्रमाण दीजिए, केवल योग्यता का नहीं। जनरल इंग्लिश की बात है। अब आप देखिए कि इंग्लिश अब कम से कम इस तरह का विषय नहीं रह गया है जिसके बारे में बात ही नहीं होती है। आप मोबाइल चला रहे हैं, आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इंग्लिश का वातावरण लगभग लगभग बन चुका है। और आप ये भी देखेंगे कि जनरल हिंदी में आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है वो 33% है, लेकिन जनरल इंग्लिश के लिए कितना रखा गया है, 25%। मतलब उसमें भी 8% क्वालिफाइंग मार्क्स कम कर दिए गए हैं। तो इतनी इंग्लिश तो हम सीख ही सकते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि आप एक ही साल में तो तैयारी करके क्वालिफाई कर नहीं जाते। सिविल सर्विस की आप तैयारी करते हैं तो 2-3 साल का तो आपका एजेंडा रहता ही है कि 2-3 साल तक हम तैयारी करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अंग्रेजी कोई ऐसी आकाशीय भाषा है कि 2-3 साल में अगर आप रोज इसे आधा आधा घंटे और 15-15 मिनट दे दें तो आप जनरल इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे? मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और इस तरह से जनरल इंग्लिश के पेपर को क्वालिफाई करने के अपने आप को योग्य बनाकर आप अपनी क्षमता का प्रमाण दीजिए कि मैं एक नई भाषा भी सीख सकता हूं। अगर आप आईएएस बन जाएंगे और तमिलनाडु में आपका मान लीजिए कि कैडर आपको मिल गया तो वहां आपको वहां की भाषा सीखनी पड़ेगी। और अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस में आ गए और आपको जब एक क्षेत्र मिल जाता है जहां आपकी पोस्टिंग होगी, आपको उस विदेशी देश की उस भाषा सीखनी पड़ेगी, तो आखिर में वहां जाकर के आप सीखेंगे तो यहां अंग्रेजी को सीख लीजिए। और एक ऐसी भाषा है जो आपको दूसरे क्षेत्रों में भी मदद करती है। तो मित्रों, मुझे नहीं लगता कि हम सी सेट और जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश के पेपर को लेकर के अपने को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। नॉट एट ऑल। देखिए, हमारी मांग अगर बहुत लॉजिकल नहीं हुई या हमारी मांग ऐसी हुई जो हमारी कमजोरियों को प्रदर्शित करती है, तो मान करके चलिए कि हम अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं, उसके आधार पर हम अपने लिए कुछ अलग किस्म के आरक्षण की मांग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वह जायज नहीं होगा। क्योंकि सरकार सिविल सर्वेंट का चयन करने जा रही है जिनके हाथ में आप मान करके चलिए कि लंबे समय तक देश का भविष्य होता है, देश के आर्थिक विकास की कहानी उन्हीं के हाथों द्वारा लिखी जानी होती है। याद रखिए कि सिविल सर्विस में आना एक नौकरी पाना नहीं है, यह उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। तो अगर हम बड़ी चीज पाना चाहते हैं तो जो कुछ भी हम अभी हैं उससे अपने आप को बड़ा तो बनाना पड़ेगा। हम सी सेट नहीं जानते तो सी सेट जान करके अपने को थोड़ा सा बड़ा बनाएं, अंग्रेजी नहीं जानते तो थोड़ा सा अंग्रेजी सीख करके अपना बड़ा बनाएं, ताकि जिस बड़े को हम पाना चाह रहे हैं उसके कद के साथ हमारा कद मैच कर सके। तो मित्रों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, अपने ढंग से देख लेंगे। न्यूज़ ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: नीतीश तिवारी भोपाल से, हर्षित यादव रामेश्वरी पालीवाल राजस्थान से, उर्मिला देवांगन छत्तीसगढ़ से, दिनेश अलवर राजस्थान से, विकास कुमार सिंह जशपुर छत्तीसगढ़ से और खेमराज जोधपुर राजस्थान से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, 2 दिनों के बाद अब आप सबसे मुलाकात होगी। ये 2 दिन आपके बहुत ही खुशनुमा तरीके से व्यतीत हों, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।